हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अमन और आंशी फैमिली के साथ घर के लिविंग रूम में टीवी देख रहा था। अचानक अमन ने चैनल चेंज किया तो उसे रॉबिन के मरने की ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाई दी। उसने चैनल को वहीं रोक दिया और पूरी न्यूज़ सुनने लगा। अभी अभी कुछ देर पहले पुलिस को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी रॉबिन डिसूज़ा की लाश मिली है। पुलिस ने उन्हें चेक किया तो उनकी जान काफी देर पहले जा चुकी थी। किसी ने बड़ी ही बेरहमी से उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। अमन ने टीवी बंद किया। अमन और आंशी रॉबिन के बारे में जानते थे। वो न्यूज़ देखने के बाद उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। क्या ज़माना आ गया है। अब तक चंडीगढ़ सेफ सिटीज़ में से एक था और अब देखो सरेआम लोगों की लाशें मिल रही हैं। चेतना जी ने न्यूज़ देखने के बाद सिर हिलाकर कहा, जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। इन सबको छोड़ो और तुम जाकर डिनर की तैयारी करो, इन सबके बारे में ज़्यादा सोचने पर माइंड अपसेट हो जाता है, तेजो जी ने चेतना जी का ध्यान हटाने के लिए कहा। वो चेतना जी को अपने साथ किचन में ले गईं। उन दोनों के जाते ही अमन ने दबी आवाज में कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, रूम में चलो। अमन के चेहरे के भाव गंभीर थे। आंशी ने उसकी बात पर हामी भरी और अमन के साथ कमरे में आ गईं। वहां आते ही उसने कहा, वो मर गया, मुझे दुख हो रहा है, उसने हमारी शादी करवाई थी, बेचारा इतनी बेरहमी से मरना भी डिज़र्व नहीं करता था। उसके लिए दुख मत मनाओ, वो इतनी ही बेरहमी से मरना डिज़र्व करता है। आई डोंट नो हाउ तुम सब कुछ भूल गई हो, पर रॉबिन ने तुम्हारी मॉम को तुम्हारी आंखों के सामने मारा था, अमन ने बताया। आंशी इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बातचीत का रुख बदलते हुए कहा, अच्छा तुम्हें क्या लगता है उसे किसने मारा होगा? तुम्हें अभी भी कोई डाउट है क्या? जरूर विधिक नहीं किया होगा ये सब, अमन ने जवाब दिया। हाँ वो ऐसा कर भी सकता है, जरूर उसे पता चल गया होगा कि उस रॉबिन ने हम दोनों की शादी कराई है। इसका सीधा सीधा मतलब ये भी निकलता है कि उसे हम दोनों की शादी के बारे में पता है, आंशी ने अंदाज़ा लगाते हुए कहा। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में डर तैर गया। अमन ने उससे इस बारे में ज्यादा बात करनी सही नहीं समझी। उसने आंशी को हग दिया। हे बोला ना, डरना नहीं है। तुम ना अपनी सीक्रेट एजेंट हस्बैंड को काफी अंडर एस्टिमेट कर रही हो। तुम्हारे उस एक्स को मैं अच्छे से देख लूंगा। तुम एक जेलस हस्बैंड साउंड कर रहे हो, आंशी ने अमन के गले में अपने दोनों हाथ डालकर कहा। अमन ने उसे वैसे ही अपनी गोद में उठा लिया। आंशी के दोनों हाथ अभी भी उसके गले में थे। हाँ तो अब कोई मेरी क्यूट सी वाइफ पर अपनी बुरी नज़र डालेगा तो उसकी तो खैर नहीं, अमन ने आंशी का मूड ठीक करने के लिए कहा। तुम मुझसे इतना प्यार मत जताओ, फिर मुझे अलग होने में दिक्कत होगी, आंशी ने उदास होकर कहा। उसकी बात सुनकर अमन चुप हो गया। आंशी ने उसे नीचे उतारने का इशारा किया तो अमन ने उसे उतार दिया। कहीं ना कहीं ये सच था कि उन दोनों को अलग होना ही था। अमन आंशी के क्लोज गया और बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, अभी इस बारे में मत सोचो, फिलहाल जो पास है उसको सहेज कर रखो, आज का सच ये है कि हम दोनों एक दूसरे के पास हैं। अमन के कहते ही आंशी ने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे तभी चेतना जी खाने के लिए बुलाने के लिए उनके कमरे में आईं। कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं था इसलिए उनके खोलते ही तुरंत खुल गया। उन दोनों को क्लोज देखकर वो तुरंत पलट गईं, तो वहीं दरवाजे की आवाज़ सुनकर अमन और आंशी भी एक दूसरे से अलग हो गए थे। अमन और आंशी इधर उधर देखने लगे। मैं भूल गई थी कि तुम्हारी शादी हो गई है, लेकिन तुम तो नहीं भूले ना, कम से कम रूम तो लॉक रखा करो, तुम्हें पता है ना मुझे अचानक आने की आदत है, चेतना जी ने अभी तक उनकी तरफ नहीं देखा था। अमन और आंशी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। उन दोनों को चुप देखकर चेतना जी ने कहा, अब इतना भी एम्बैरस होने की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों टाइम स्पेंड करो, मैं खाना अंदर ही भिजवा देती हूँ, खैर छोड़ो जब तुम दोनों को भूख लगे तब खुद ही लेने आ जाना, कहकर चेतना जी वहां से चली गईं और उन्होंने दरवाज़ा वापस बंद कर दिया। मुझे एजेंसी जाना होगा, अमन बोला। पता है तभी इतना प्यार आ रहा था तुम्हें मुझ पर, आंशी ने आंखें घुमाकर कहा। डिनर के बाद चले जाना और हाँ भूल मत जाना, मुझे आने के बाद बैड बिहेव किया तो तुम्हारी खैर नहीं है, अमन ने उसकी बात पर हामी भरी। दोनों रूम के बाहर डाइनिंग टेबल पर आ गए थे। चेतना जी और तेजो जी ने डिनर करना शुरू ही किया था, वो दोनों भी वहां बैठ गए। उन दोनों को ऑकवर्ड ना लगे इसलिए चेतना जी ने कहा, अच्छा तुम दोनों कोई अच्छी सी जगह ढूंढकर हनीमून पर क्यों नहीं चले जाते? उनकी बात सुनकर अमन और आंशिक हंसने लगे तो वहीं तेजो जी भी उन्हें अजीब नजरों से देख रही थीं। उन्होंने कहा, चेतना, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, तुम उसकी माँ हो ना कि फ्रेंड। उसे कहीं जाना होगा तो वो खुद ही बता देगा। मैं तो सजेस्ट कर रही थी बीजी, चेतना जी ने मुंह बनाकर कहा। मैं थोड़ा बिजी हूँ, जब भी फ्री होऊंगा हम कहीं चले जाएंगे, अमन ने जवाब दिया। हाँ, जैसे फ्री हो ही जाओगे तुम, आंशी ने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा। उसने खाना खाते हुए अमन की तरफ देखा जो आराम से खाना खा रहा था। डिनर करने के बाद अमन वहां से एजेंसी पहुंचा। रॉबिन के मरने की न्यूज़ अब तक पूरे चंडीगढ़ में फैल चुकी थी। वहीं उसके इस तरह मरने पर काफी सवाल खड़े हो रहे थे। अमन की पूरी टीम मीटिंग रूम में थी। वो चुपचाप वहां जाकर बैठ गया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि रॉबिन को किसने मारा होगा। मैं 100% श्योर हूँ विधिक ने ही उसकी जान ली है। अब वो जिसके लिए काम कर रहा है उस काम के लिए वो किसी और बंदे को उसकी हेल्प के लिए ढूंढेगा या सारा काम विधिक ही निपटाएगा। ये उसके लिए काफी क्रूशल टाइम रहने वाला है। रॉबिन की मौत से अंडरवर्ल्ड में भी हड़कंप मच गया होगा और जल्दी से कोई विधिक के साथ काम करने के लिए हाँ नहीं कहेगा। हमें इस मौके का फायदा उठाना है, तेज प्रताप दत्त बोले। अब हमारा काम और भी आसान हो गया है। मलिसा को इस बारे में बताया कि रॉबिन मर चुका है। उसे पता चलेगा तो वो आराम से विधिक के खिलाफ स्टेटमेंट दे देगी। कॉल में वैसे भी विधिक ने उसे मारने की धमकी दी थी, अमन ने सुझाव दिया। आइडिया काफी अच्छा है। विधिक ने जो भी किया है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो हॉस्पिटल में ब्लास्ट करवाएगा। फिर भी हमें अलर्ट रहना होगा। जस, तुम जाकर मलिसा को रॉबिन की मौत के बारे में बताओ, तेज प्रताप दत्त ने जस की तरफ देखकर कहा। उसने उनकी बात पर हामी भरी और अपने आईपैड के साथ मलिसा के पास पहुंचा। पिछले दो दिनों में मलिसा के साथ जो भी हो रहा था उससे उसके चेहरे की रंगत उड़ गई थी।